आदरणीय भिक्षु संघ, पावन हिमालय देश के प्रबुद्ध निवासियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, धर्म गंगा के तट पर आज चौथी बार एकत्र हुए हैं। धर्म गंगा के कल कल निनाद को सुनने के लिए शीतल शांत वातावरण, मनोरम वातावरण, उसका आनंद लेने के लिए, पर सही लाभ तो धर्म की गंगा में डुबकी लगाने से ही मिलेगा। लेकिन अच्छा है गंगा के तट तक तो आए। जो बेचारा गंगा के तट तक ही नहीं आया वो गंगा में डुबकी कैसे लगाएगा। जो तट तक आ गया उससे ये आशा की जा सकती है कि देर सबेर वह धर्म के गंगा में डुबकी लगाएगा ही। लाभ तो तभी होगा, मन के मैल तभी उतरेंगे, जन्म जन्म के बंधन तभी टूटेंगे। धर्म की गंगा के तट पर आकर हमने ये समझने की कोशिश की कि धर्म क्या होता है, शुद्ध धर्म क्या होता है। संप्रदाय से धर्म दूर रहता है, धर्मवान व्यक्ति अपने आप को किसी संप्रदाय में नहीं बांधेगा। संप्रदाय भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग समाज के होंगे, अलग अलग समूह के होंगे, धर्म तो सबका होगा। धर्म यदि शुद्ध है तो उसे सब धारण कर सकेंगे, उसे धारण करने में किसी को जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी, और जो धारण करेगा वो चाहे जिस समाज का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस जाति का हो, वर्ण का हो, गोत्र का हो, वर्ग का हो, चाहे जिस देश का हो, चाहे जिस रंग रूप का हो, चाहे जिस बोली भाषा का हो, जो धर्म धारण करेगा वही लाभान्वित हो जाएगा। धर्म किसी का पक्षपात नहीं करता, जो धर्म की रक्षा करता है यानी अपने भीतर धर्म सुरक्षित रखता है, चित्त की निर्मलता को सुरक्षित रखता है, धर्म उसकी रक्षा करने लगता है। जो धर्म का हनन करता है यानी अपने भीतर की निर्मलता का हनन करता है, धर्म उसका हनन करने लगता है। ये कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं जो सब पर लागू होते हैं। ये बात समझ में आई तो धर्म कैसे धारण करें। तीन चरण धर्म के, पहला चरण शील सदाचार का जीवन जिए, यानि अपनी वाणी से और अपने शरीर से कोई ऐसा काम नहीं करें, कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो, जिससे अन्य प्राणियों का अहित होता हो, जिससे अन्य प्राणियों का अमंगल होता हो। और ये बात भी समझ में आई कि शील सदाचार का धारण करके हम अन्य प्राणियों पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप पर ही एहसान कर रहे हैं। क्योंकि जब जब अपना शील सदाचार भंग करते हैं, यानी शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म करते हैं, तो इसके पहले अपने मन में कोई विकार जगाते हैं। विकार जगाया कि हमें दंड मिलने लगता है, हम व्याकुल हो जाते हैं, दुखियारे हो जाते हैं। तो पहले अपनी हानि करते हैं, फिर किसी और की हानि करते हैं। ये बात कम से कम बुद्धि के स्तर पर समझ में आए। जिस दिन धर्म गंगा में डुबकी लगाने आ जाएगी, उस दिन अनुभूति के स्तर पर समझ में आने लगेगी कि देख, शरीर से या वाणी से कोई भी दुष्कर्म किया तो पहले मन में विकार जागा ना, और विकार जागा तो मन व्याकुल हुआ ना। यूं अपनी अनुभूतियों से जानना शुरू कर दोगे, गहरी गहरी अनुभूतियों तक चले जाओगे। ऊपर ऊपर से कोई देखना चाहे तो सही बात नहीं समझ में आती। मानस का ऊपरी ऊपरी हिस्सा एक प्रकार से काम करता है, वो बहुत छोटा होता है। मानस का भीतरी हिस्सा जो बहुत बड़ा होता है, वो अंधा होता है। और अनेक जन्मों से जो विकार इकट्ठे किए हैं, जो मैल इकट्ठा किया है, वो आग के अंगारों की तरह हमारे भीतर हमें जलाते रहते हैं। वो अंतर्मन की गहराइयों में जलाते रहते हैं, और उन आग के अंगारों पर भस्मा छिन्नो व पावको, इन आग के अंगारों पर जैसे भस्म, मोटी मोटी भस्म की सतह पड़ी है, तो ऊपर ऊपर वाले चित्त को देखते हैं तो ये राख ही दिखती है, अंगारा नहीं दिखता। जब विपश्यना करते हुए अंतर्मुखी होकर गहराइयों तक जाना सीख जाएंगे, तब भीतर की सारी सच्चाई मालूम होने लगेगी, और तब उससे छुटकारा पाने का रास्ता मिलने लगेगा। तो शील सदाचार का पालन करना और सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। फिर मन को वश में करने की बात समझी। समाधि का अभ्यास कैसे हो? जिस किसी आलंबन से हम अपने चित्त को एक जगह लगा लें, यानी एकाग्र कर लें, उसी को समाधि कहते हैं। लेकिन जिसको मुक्ति के रास्ते पर चलना है, अपने मन को नितांत विकारों से विमुक्त कर लेना है, उसको समाधि नहीं, उसे सम्यक समाधि चाहिए। समाधि और सम्यक समाधि का भेद यही कि सम्यक समाधि का काम शुरू करेंगे तो यहीं से निर्मलता का काम शुरू हो गया। अगला कदम जो प्रज्ञा का उठाएंगे, उसमें तो निर्मलता ही निर्मलता। समाधि ही सम्यक नहीं हुई, इस प्रकार की हुई कि चित्त तो एकाग्र हो गया पर राग के आधार से हो गया, द्वेष के आधार से हो गया, मोह मूढ़ता के आधार से हो गया। एकाग्र तो खूब हो गया, चित्त को निर्मल तो जरा सा भी नहीं किया, बल्कि और मैला करने लगा। वो एकाग्रता, वो समाधि हमारे किसी काम की नहीं। इसलिए जिसे प्रज्ञा के क्षेत्र में चलना है आगे, प्रज्ञा माने प्रत्यक्ष ज्ञान। ये जो सुन रहे हो प्रवचन धर्म का, ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है, किसी और का ज्ञान है और हम सुन रहे हैं। पुस्तकों से पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, वो परोक्ष ज्ञान है, किसी और का ज्ञान है। हमने उसे पढ़ा और स्वीकार कर लिया, कभी श्रद्धा के मारे स्वीकार कर लेते हैं, अरे ये तो हमारे उस महापुरुष की वाणी है, अरे ये तो हमारे उस धर्म ग्रंथ की वाणी है, ये तो हमारे उस गुरु महाराज की वाणी है और उस पर हमें बड़ी श्रद्धा है, बड़ा विश्वास है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। अच्छी बात है, धर्म की सही बात हो उसे श्रद्धा से भी स्वीकार करे तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा नहीं। लेकिन तो अगला कदम होता है कि उसे बुद्धि के तराजू पर तोल के देखता है कि जो बात सुनी है, जो बात पढ़ी है वो कैसी है, उसे तर्क के कसौटी पर कस कर देखता है कि जो बात सुनी है, जो बात पढ़ी है, क्या वो तर्क संगत है, क्या वो बुद्धि संगत है, क्या वो न्याय संगत है। ऐसा हो तो ही स्वीकार करेगा, नहीं तो नहीं स्वीकार करेगा। बुद्धि से स्वीकार कर लिया, तर्कों से स्वीकार कर लिया तो भी ज्ञान तो पराया ही है, हमने तो केवल बुद्धि लगाई। और बुद्धि बेचारी की एक सीमा होती है, बस उतनी सीमा तक ही वो काम करेगी। अपना अनुभव नहीं हुआ, अपना ज्ञान नहीं हुआ। जिस दिन अपना ज्ञान जागना शुरू हो जाएगा उस दिन बात ही कुछ और होगी। वही बात जो सुनते आ रहे थे, वही बात जो पढ़ते आ रहे थे, वही बात जिसका चिंतन मनन करते आ रहे थे, अब वो बिल्कुल नए रूप में दिखाई देगी और गहराइयों से बात समझ में आएगी और सही तरीके से बात समझ में आएगी। तो सम्यक समाधि ये काम करती है कि हम अपना प्रत्यक्ष ज्ञान, अपना ज्ञान कैसे जगाएं। अपना ज्ञान जागे बिना विकारों से विमुक्ति नहीं होगी, अंतर मन की गहराइयों में अंगारे जलते ही रहेंगे। ये ऊपर ऊपर की राख, इसकी भले थोड़ी सी सफाई कर लें तो बुद्धि के स्तर पर तो भले थोड़ी सी निर्मलता आ जाए, लेकिन मानस की गहराइयों तक निर्मलता नहीं आ सकती। मानस की गहराइयों तक निर्मलता लानी है तो वहाँ तक पहुँचना होगा, मन के उन तल स्पर्शी गहराइयों तक पहुँचना होगा जहाँ विकारों का हमने संचय कर रखा है, संग्रह कर रखा है, न जाने कितने जन्मों से कर रखा है और किए ही जा रहे हैं, जहाँ विकार पर विकार, विकार पर विकार जागे जा रहे हैं, जागे जा रहे हैं, उनका संवर्धन हुए जा रहा है, संवर्धन हुए जा रहा है। हम भीतर ही भीतर व्याकुल रहते हैं, ये ऊपर ऊपर की जो राख पड़ी है तो इसकी वजह से बाहर बाहर के इंद्रिय सुख, अरे मुझे ये सुख मिल गया, हमें ये सुख मिल गया। जैसे उस दिन किसी भाई ने पूछा कि कोई चीज़ चुरा ली तो मन बड़ा खुश हुआ, अरे ये ऊपर ऊपर की खुशी है, हमने ये बुरा काम किया तो मन खुश हुआ, हमारा वो बुरा काम किया मन खुश हुआ, अरे ये तेरा ऊपर का चित्त, परित चित्त, परिमित चित्त, छोटा सा चित्त, जो बहुत बड़ा चित्त है उसे देख क्या बीत रही है तेरे भीतर, किस तरह से दुष्कर्म करके तू उस अंगारों को बढ़ा रहा है, अपनी प्रज्वलन बढ़ा रहा है, अपनी व्याकुलता बढ़ा रहा है, अपने बंधन बढ़ा रहा है, गांठे पर गांठे, गांठे पर गांठे, क्या हालत बना रखी है। वो देखने के लिए प्रज्ञा, और उस प्रज्ञा द्वारा अपने मन के विकारों से मुक्ति। चाहते तो सभी हैं कि हम भव सागर से मुक्त हो जाएं, अरे बार बार जन्मना और फिर बूढ़ा होना और बीमार होना और फिर मर जाना, फिर जन्मना, बूढ़ा होना, बीमार होना, मर जाना, और सारे जीवन भर मनचाही बात कभी हो कभी नहीं हो, अनचाही बात बार बार हो, व्याकुल ही व्याकुल रहना, कैसा जीवन है। और ये कब से चले आ रहा है, न जाने कब से चले आ रहा है और न जाने कब तक चलता रहेगा। तो इसी तरह दुखों में पिसते रहेंगे, क्या इसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। चाहते हैं निकलना तो चाहते हैं, पर कैसे निकले। भव से पार तो होना चाहते हैं, पर कैसे पार हों।
जब तक चित्त न तजे विकारा, तब तक कैसे हूँ भव पारा, जब तक चित्त न तजे विकारा।
चित्त का विकार दूर हो जाए, अपने आप मुक्त हो गया। बंधन काहे का है, किसने हमें रस्सियों से बांध रखा है, किसने हथकड़ियों से बांध रखा है, किसने बेड़ियों से बांध रखा है। बंधन मन के विकारों का है। जब तक मन विकारों से विकृत है, तब तक बंदी ही बंदी हैं, बंदी ही बंदी हैं। विकार दूर हुए, हम मुक्त हो गए। विकार दूर करने का कोई काम स्वयं करना पड़ेगा, कोई और कर देगा, ये होने वाला नहीं है। संप्रदाय हमें उस ओर ले जाएगा जहाँ कहेगा कि ये कर्मकांड पूरा कर ले और तू मुक्त हो जाएगा। दूसरा संप्रदाय वाला कहेगा ये कर्मकांड पूरा कर ले तो मुक्त हो जाएगा। तीसरा संप्रदाय वाला कहेगा ये कर्मकांड पूरा कर ले तू ये दार्शनिक मान्यता मान ले, तू वो दार्शनिक मान्यता मान ले। समझदार आदमी होगा तो सोचेगा ये कर्मकांड करने से मैं मुक्त कैसे हुआ रे, ये कर्मकांड करने से मेरे विकार कहाँ निकले, ये दार्शनिक मान्यता मान लेने से मेरे विकार कहाँ निकले। खूब समझेगा, अपनी किसी बेहोशी में रहेगा। सांप्रदायिक मान्यताओं की एक बहुत बड़ी बेहोशी होती है, आदमी सोचना बंद कर देता है, चिंतन मनन करना बंद कर देता है। हमारी परंपरा ये मानती है ना, हमारा संप्रदाय ये मानता है ना, हमारे धर्म ग्रंथ ये मानते हैं ना। सोचेगा नहीं, चिंतन ही नहीं करेगा तो कैसे बाहर निकलेगा। चिंतन करेगा तो देखेगा कि जो कोई भी कर्मकांड कर रहा हूँ, जो कोई भी दार्शनिक मान्यता मान रहा हूँ, इस तरह की मानूँ कि उस तरह की मानूँ, मेरे विकार दूर हुए कि नहीं, मेरा क्रोध पहले से कम हुआ कि नहीं, मेरी वासना पहले से कम हुई कि नहीं, मेरा अहंकार पहले से कम हुआ कि नहीं। यूँ अपने आप को जांचता रहेगा और देखेगा कि केवल ऊपर ऊपर से कम हो गई और फिर जागती है, ऊपर ऊपर से जरा से कम हो गई फिर जागती है, तो अरे भुलावा हुआ ना, छलना हुई ना। अंतर्मन के गहराइयों तक पहुँचे बिना अंदर के विकारों को कैसे निकालेंगे। आदमी दुखी तो भीतर होता है ना, घटना बाहर घटती है, कोई अनचाही घटना घटी बाहर घटी, लेकिन दुखी भीतर हुआ तो समझेगा कि भीतर दुखी हुआ तो मेरे दुख का कोई कारण भीतर होगा, बाहर नहीं। बाहर बाहर से तो अपेरेंट ट्रुथ ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये घटना ऐसे घटी इसलिए मैं दुखी हुआ, या ये घटना ऐसे नहीं घटी इसलिए मैं दुखी हुआ, यूं लगता है। पर दुख तो भीतर आया ना, तो भीतर भी कोई कारण होगा। तो खूब समझ में आएगा समझदार आदमी के कि भीतर मैंने विकार जगाया, बाहर की घटना ये घटी कि वो घटी। अगर मैं भीतर विकार नहीं जगाता मैं कभी दुखी नहीं होता। तो मेरे दुख का सही कारण मेरे भीतर है, मेरे भीतर जो विकार जगाता हूँ उसकी वजह से दुखी होता हूँ, ये बात खूब समझ में आने लगेगी। तो जब दुख भीतर है, दुख का कारण भीतर है, विकार भीतर हैं, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए बाहर का किया हुआ काम वो कैसे मदद करेगा। कर्मकांड तो बाहर करेंगे, तो बाहर का कर्मकांड करेंगे और भीतर हमारे विकार निकल जाएंगे। अरे भाई धोखा ही धोखा ना, भीतर काम करना पड़ेगा, भीतर पहुंचना पड़ेगा, सच्चाई के दर्शन करने पड़ेंगे अपने भीतर। तो जितना जितना मैल निकलता चला जाएगा उतना उतना दर्शन बहुत स्पष्ट होता चला जाएगा, और जितना जितना दर्शन स्पष्ट होता चला जाएगा उतने उतने विकार निकलते चले जाएंगे, दोनों एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर देंगे। विकार निकले, इस मन रूपी दर्पण को मांझते रहें, जो दर्शन की ना चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, जो दर्शन की ना चाहिए। सत्य का दर्शन करना है तो ये जो भीतर का दर्पण है इसकी सफाई नहीं होगी, क्या दर्शन करेंगे, कैसे दर्शन करेंगे। बहुत पुराने जमाने में लोग अपना चेहरा देखना चाहते थे तो किसी बर्तन में बहुत स्वच्छ पानी उसमें अपना चेहरा देखते थे, प्रतिबिंब देखते थे उसमें। अगर वो बर्तन का पानी बहुत हिलता डुलता हो तो क्या प्रतिबिंब दिखेगा? अगर वो बर्तन का पानी बहुत मैला हो क्या प्रतिबिंब दिखेगा? या उस दर्पण के पानी में कोई रंग मिला दिया हो तो सही प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा, वो रंग सामने आएगा। तो इसलिए अगर दर्शन करना है सच्चाई का तो साथ साथ मन के मैल उतरते चले जाएं, उतरते चले जाएं, वो शांत होता जाए, वो शांत होता जाए। ये जो कल बताया कि सम्यक समाधि के लिए 3 दिनों तक काम करना पड़ता है, यही काम करना पड़ता है कि उसमें जो इतनी भारी भारी लहरें उठ रही हैं, उत्ताल तरंगें उठ रही हैं, वो कुछ तो शांत हों। इसमें जो इतना मैल है ऊपर ही ऊपर, ऊपर ऊपर का मैल तो जरा सा निकले, निकलना शुरू हो तो उससे नीचे की चीज़ साफ दिखाई देगी, और मैल उतरेगा उससे नीचे की चीज़ साफ दिखाई देगी। ये काम स्वयं करना पड़ेगा, कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। विकार हमने जगाए, अपनी अज्ञान अवस्था में जगाए, अपनी अबोध अवस्था में जगाए, अपनी नासमझी में जगाए, अपनी बेहोशी में जगाए, हम जिम्मेदार हैं ना? बाहर की कोई सत्ता, कोई शक्ति, वो क्यों जिम्मेदार है हमको मैला बनाने में? हम जिम्मेदार हैं। तो भाई, इसकी सफाई करने का काम भी हमें करना पड़ेगा, कोई दूसरा कैसे करेगा? हम चाहें कि प्रार्थनाएं कर लें और कोई दूसरा कर देगा, हम चाहें किसी की प्रशंसा कर दें और वो कर देगा। मन को भुलावे में भले रख लें, ऐसा होता नहीं, हो सकता भी नहीं। कोई आदमी नदी के इस तीर पर खड़ा हो, इस तट पर खड़ा हो, और किसी ने कह दिया नदी का वो तट बड़ा सुहावना है, बड़ा मनोरम है, अब इसका जी चाहे कि नदी के वो तट की जो मनोरमता है, जो उसका सुहावनापन है, उसका उपभोग मैं भी करूं, उसका दर्शन मैं भी करूं, चाहता है, पर करता क्या है? नदी के इस तट पर खड़ा होकर के बड़े कातर कंठ से, डबडबाई आंखों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, ऐ नदी के वो तट तू यहाँ आ जा, ऐ नदी के वो तट तू यहाँ आ जा, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूँ, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूँ। सारी जिंदगी रोता रह जाएगा, नदी का वो तट यहाँ आने वाला नहीं है। स्वयं नदी को पार करनी होगी, उस तट तक स्वयं पहुँचना होगा तो उसका दर्शन होगा। नदी किसकी है? विकारों की नदी है, राग की नदी। वो जो नित्य शाश्वत ध्रुव अमर अवस्था है, परम सत्य अवस्था है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे लिए बीच में यह नदी है विकारों की। राग है, द्वेष है, मोह है, और भिन्न भिन्न प्रकार के विकार हैं। ये नदी सूख जाएगी तो चल करके पहुँच जाएंगे वहाँ तक। तो प्रज्ञा इसीलिए जगाते हैं कि अपने विकारों से छुटकारा पाते जाएं। जितना जितना छुटकारा पाते चले जाएंगे, उतना उतना परले तट के समीप पहुंचते चले जाएंगे, और कदम कदम चलते हुए वहां तक पहुंच ही जाएंगे। दुनिया की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती, स्वयं काम करना पड़ेगा। कोई बताने वाला बड़े प्यार से रास्ता बता देगा, अगर उस रास्ते पर चला है तो रास्ता बता देगा। हो सकता है कुछ देर साथ चल के बता दे, यूं चलना होता है, चलना तो खुद ही पड़ेगा। कोई हमें अपने कंधे पर उठा करके उस अवस्था तक पहुंचा दे, ये होने वाली बात नहीं है, ये कभी होती नहीं। तो इस बात को खूब अच्छी तरह समझ करके ही हमें आगे का कदम उठाना है कि अपनी प्रज्ञा कैसे जागे, जिससे हमारा चित्त कैसे निर्मल हो। इसके लिए अपने भीतर प्रवेश करना होगा। ये जो कहा कि 3 दिनों तक शिविर में आने पर 3 दिनों तक नासिका के द्वारों के पास मन को टिकाए रखते हैं, केवल ये देखने के लिए कि सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, बस सारा ध्यान इसी स्थान पर लगा है। किस लिए? हमें किसी घर में प्रवेश करना है, अरे घर की ड्योढ़ी तक ही नहीं पहुँचे, उसकी देहली तक ही नहीं पहुँचे, वहीं हमको खड़ा होना नहीं आया, डगमगा रहे हैं, भीतर कैसे जाएंगे? तो ये 2-3 दिनों तक सिखाया जाता है कि भीतर जाने के लिए, हमारे शरीर के भीतर जाने के लिए ये दरवाजे हैं, इन दरवाजों के सामने खड़ा होना सीख, और यथाभूत जैसा है वैसा है उसको देखना सीख, उसको अनुभव करना सीख। तब भीतर की सच्चाई जानने के लिए अंदर जाना आ जाएगा, सारी सच्चाई मालूम होने लगेगी। जाना तो भीतर ही है, ये जो 3.5 हाथ की काया है इसके भीतर क्या हो रहा है, सारे विकार भीतर ही जागते हैं, बाहर नहीं। और हमने आदत ऐसी बना ली कि जब से जन्मे आँख खुली बहिर्मुखी 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 ही रहे, कभी अंतर्मुखी हुए नहीं। और किसी बेचारे ने अंतर्मुखी होने का कोई अभ्यास किया भी तो आँख बंद करके सच्चाई का दर्शन नहीं करता, किसी कल्पना का दर्शन करता है। कोई सुनी सुनाई बात, कोई पढ़ी पढ़ाई बात, ये हमारी परंपरा की बात, ये हमारी दार्शनिक मान्यता की बात, करो उसका चिंतन तो करो उसकी कल्पना, सच्चाई कहाँ। अरे भाई, कानों सुनी सो झूठ सब, आँखों देखी सच। जब तक अपनी अनुभूति से नहीं जानोगे तब तक सच्चाई नहीं समझ में आएगी। कान से सुना है केवल, पढ़ा है केवल, वो सच्चाई तो उस व्यक्ति की है जिसको उसकी अनुभूति हुई, उसने उसे शब्दों में रखा। हम शब्दों में रखी हुई बात कैसे समझ पाएंगे, भाषा की अपनी सीमा होती है, शब्दों की अपनी सीमा होती है, हमारी समझ की अपनी सीमा होती है। वो किस धरातल पर जाकर के उसने अपनी बात कही है और हम किस धरातल से उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा ही धोखा होगा, कभी होगा नहीं। तो सुनी सुनाई बात से हमें प्रेरणा मिल जाए, ये समझ में आने की बात, पढ़ी पढ़ाई बात से हमें प्रेरणा मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, ये अच्छी बात। पर जो सचमुच दर्शन होगा वो तो अपनी अनुभूति से ही होगा, अपना ज्ञान जागेगा। और अपना ज्ञान 3.5 हाथ की काया के भीतर जागता है, बाहर नहीं जाग सकता। इसीलिए अपने यहाँ संतों ने कहा कि 3 हाथ 1.5 अड़ाई ऐसा अंबर चीनो मेरे भाई, ओ देखो मेरे भाई खोजो मेरे भाई, 3 हाथ 1.5 अड़ाई। ये सारा शरीर 3 हाथ और 1.5 हाथ, ये 3.5 हाथ का शरीर, इसके भीतर जो अंबर है उसकी खोज करो, सच्चाई उसमें मिलेगी। अपने यहाँ के महान संत ने मानो आज के पश्चिम के वैज्ञानिकों को चुनौती दी, अरे बाहर अंतरिक्ष में क्या खोजने जा रहे हो, उसकी निंदा नहीं, जो खोज करेंगे तो सांसारिक ज्ञान तो बढ़ेगा ही, लेकिन परमार्थ ज्ञान कहाँ से आएगा, मुक्ति का ज्ञान कहाँ से आएगा। वो अगर चाहिए तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अपने भीतर अपने बारे में क्या सच्चाई है उसे जानना पड़ेगा। अपने बारे में जिसने सच्चाई जानी नहीं और दुनिया भर की सच्चाई जानने में सारा जीवन लगा दिया, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। और जिसने अपने बारे में सच्चाई अनुभूतियों से जान ली, अरे उसने सब काम की बात जान ली, बाकी बातें सारी उसे निकम्मी लगेगी। काम की बात यही है कि आपो जानो आपो आप, रोगन व्यापे तीनों ताप। अपने आप को जान लो, फिर कोई भव रोग नहीं रहेगा, कोई भव दुख नहीं रहेगा, सारे दुखों से मुक्ति हो जाएगी, सारे बंधनों से मुक्ति हो जाएगी। अपने आप को जानो। पंजाब के एक मुस्लिम संत ने कहा, अरे संत संत होता है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या जैन क्या बौद्ध, जिसने मन निर्मल कर लिया वो संत हो गया। तो पंजाब का एक संत कहता है, हाशम जिनहा हाशम तिनहा रब पछाता, जिनहा अपना आप पछाता। जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया, उसने रब को जान लिया, अल्लाह को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, अरे परम सत्य को जान लिया। परम सत्य ही तो परमेश्वर है। अपने आप को जाने बिना उसे जान जाएगा, असंभव बात है। ये जो सांसारिक सच्चाई है, शरीर और चित्त की सच्चाई है, ये रोके हुए हमें कि शरीर और चित्त के परे की जो परम अवस्था है वहाँ तक पहुँचने में बंधन इसी का है। ये सारा शरीर जिसे मैं मेरा मेरा किए जा रहा है और कुछ नहीं जानता इसके बारे में। शरीर शास्त्र पढ़ा होगा, पुस्तकें पढ़ी होगी, उसको जानना नहीं कहते, उसको मानना कहते हैं। अनुभूति से इसके बारे में कुछ नहीं जाना। और ये सारा चित्त प्रपंच जिसे मैं मेरा मेरा किए जा रहा है, कुछ नहीं जानता इसके बारे में, अनुभूति के स्तर पर कुछ नहीं जानता। अपने बारे में जानना है तो जिसे मैं कर रहा है, मेरा मेरा कर रहा है, बुद्धि से हजार कहता है कि ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर मेरी आत्मा नहीं, ये चित्त मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, क्योंकि बचपन से सुनता आया, सुनी सुनाई बात है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, खूब सुना, उसके लेप लग गए। अरे तुझे अनुभव कहाँ हुआ, तू कैसे जान गया कि आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न, तू कैसे जान गया कि शरीर तू नहीं और तेरा नहीं और चित्त तू नहीं तेरा नहीं। अनुभूतियों से जानने लगेगा तो इसके साथ जो मैं मेरे का तादात्म्य स्थापित कर लिया, इसके प्रति जो गहरी आसक्ति पैदा कर ली, वो टूटती चली जाएगी। वो टूटती चली जाएगी तो सारा प्रपंच समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है, किसको बावलेपन में मैं किए जा रहा था, किसको बावलेपन में मेरा मेरा किए जा रहा था, और कितने प्रकार की कितनी गहरी आसक्ति पैदा करके विकार पर विकार, विकार पर विकार जगाया जा रहा था और व्याकुलता पर व्याकुलता बढ़ाया जा रहा था, कितना अंधापन था। ये अंधापन प्रवचनों से नहीं निकल सकता, ये अंधापन शास्त्रों को पढ़ने से नहीं निकल सकता। इसको अपने यहाँ पुरानी भाषा में विद्या कहा। विद्या स्कूल की पढ़ाई को नहीं कहते थे, कॉलेज की पढ़ाई को विद्या नहीं कहते थे, शास्त्रों की पढ़ाई को विद्या नहीं कहते थे। स्वयं वेदन से जो ज्ञान जागे, अपने अनुभव से जो ज्ञान जागे, वही अपने यहाँ वेद कहलाता था, वही अपने यहाँ सही ज्ञान कहलाता था। और उस ज्ञान से ही सही बात समझते हुए बंधन से मुक्ति प्राप्त होती थी। वो काम करने के लिए 3 दिन तक सम्यक समाधि का काम करना पड़ा और उसके बाद ये प्रज्ञा के क्षेत्र में कदम रखना पड़ा। प्रज्ञा अपनी जगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो, कैसे जगे? जिसकी अपनी प्रज्ञा नहीं जागी, वो भीतर की सच्चाई का कल्पना भले कर ले, अनुभव नहीं कर सकेगा। और हमें तो अनुभव करना है, तो अनुभव करने के लिए वो एक शक्ति चाहिए। वो शक्ति जो हमको भीतर की सच्चाई को अनुभूतियों पर उतारने में मदद कर सके। जैसे बाहर के संसार को देखना हो, रूप रंग रोशनी आकृति, तो हमारे पास देखने की शक्ति चाहिए। जिसके पास आँख नहीं है वो क्या देखेगा? नहीं देख पाएगा। सुनने की शक्ति चाहिए तो बाहर के शब्दों को हम जान पाएंगे, ये शब्द हैं। कान की शक्ति चाहिए, सुनने की शक्ति चाहिए, सूंघने की शक्ति चाहिए, चखने की शक्ति चाहिए, छूने की शक्ति चाहिए। ये नहीं होंगे तो बाहर की दुनिया हमारे लिए बाहर की दुनिया नहीं है, हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार भीतर की दुनिया को जानने के लिए ये प्रज्ञा की शक्ति चाहिए। ये नहीं है तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। एक कहानी चलती है अपने यहाँ, दो बालक बहुत बहुत गरीब, बहुत दुखियारे, भीख मांग करके अपना पेट पालें। उनमें से एक अंधा, जन्म का अंधा, दूसरा उसे हाथ पकड़ के ले जाए और दोनों घर घर जाके भीख मांगे और इस तरह अपना पेट पालें। एक दिन ऐसा हुआ कि जो जन्म का अंधा था बीमार हो गया, बहुत तेज ताप हो गई उसे। तो दूसरा कहता है, भाई इतनी तेज ताप में तू मेरे साथ चलेगा तो और बीमार हो जाएगा, तो यहीं फुटपाथ पर लेटर है, वही उनका घर था, लेटर है, आज मैं अकेला भीख मांग लाता हूँ और दोनों मिलके खा लेंगे। अच्छी बात, वो लेट गया और ये भीख मांगने गया। और ऐसा संयोग हुआ कि किसी घर के सामने जब खड़ा हुआ तो घर वाली को बड़ी दया आई, उनके यहाँ उस दिन खीर बनी थी, उसने खीर दे दी उसे परोस दी। उसके पास कोई पात्र तो था नहीं, अब क्या करे, जो खीर मिली वो अंजलि में ली और पी गया, अपने मित्र के लिए कैसे लाता। लौट कर आया तो सच्ची सच्ची बात अपने मित्र से कह दी कि भाई कोई पात्र नहीं था, आज तो भीख में खीर मिली, मैं तेरे लिए नहीं ला सका। तो वो मित्र कहता, अच्छा नहीं ला सके पर बताओ तो सही है, खीर क्या होती, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। अरे खीर का नाम नहीं सुना तूने? नहीं मैंने तो नहीं सुना, बताओ कैसी होती है। अरे सफ़ेद सफ़ेद होती है। सफ़ेद सफ़ेद होती है? वो बेचारा जन्म का अंधा, सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है? अरे तुझे नहीं मालूम सफ़ेद क्या होता है? क्या होता है सफ़ेद भाई? अरे जो काला नहीं होता वो सफ़ेद होता है। तो काला क्या होता है? उस बेचारे को काला भी नहीं पता, उसको सफ़ेद भी नहीं पता। अरे कैसा मूर्ख है, तुझे काला नहीं पता, तुझे सफ़ेद नहीं पता, वो जन्म का अंधा। भाई मुझे तो नहीं पता, तू समझा ना किसी तरह। पास कोई बगुला खड़ा था, उसे पकड़ लाया। ऐसा सफ़ेद होता है, ऐसा सफ़ेद होता है तो क्या करे बेचारा, उस पर हाथ फेरता है, हाथ से उसे छू के अब समझ गया कैसा सफ़ेद होता है, बड़ा मुलायम मुलायम होता है। अरे सफ़ेदी से मुलायम और खुरदरी से क्या लेना देना रे, सफ़ेद सफ़ेद होता है। अरे तूने कहा ना इस पक्षी जैसा है, हमने तो हाथ लगाया बड़ा मुलायम है तो सफ़ेद मुलायम ही होगा। अरे नहीं मुलायम की बात नहीं है, तो समझने की कोशिश कर। क्या कोशिश करे बेचारा, फिर छूता है उसे, उसकी चोंच से शुरू करता है और सारे शरीर पर हाथ फेरते हुए पूंछ तक चला जाता है। अब समझ गया टेढ़ा होता है, तेरी खीर टेढ़ी है, तब से ये मुहावरा बन गया तेरी खीर टेढ़ी है। जो बेचारा जन्म का अंधा कैसे समझेगा सफ़ेद क्या है सफ़ेद खीर क्या है। ऐसे ही जिसने कभी अपने भीतर प्रज्ञा जगाने की काम नहीं की, वो सच्चाई का कैसे दर्शन करेगा, और बात करेगा दर्शन की, ये दर्शन वो दर्शन, हमारा दर्शन तुम्हारा दर्शन, हमारी ये दार्शनिक मान्यता तुम्हारा दर्शन, किसी ने नहीं किया अनुभव, किसी ने नहीं किया, क्योंकि अनुभव करने की आँख नहीं है, अनुभव करने की शक्ति नहीं है, अनुभव करने की प्रज्ञा नहीं है। तो इन सारे दार्शनिकों की खीर टेढ़ी है, हमेशा टेढ़ी ही रहती है। तो भाई इसलिए ये 3 दिन तक सांस पर काम करते हैं, शुद्ध सांस पर, उस पर कुछ आरोपण नहीं करते, था पिया न जाई, और अपनी ओर से कुछ क्रिएट नहीं करते, कीता न होई आपो आप निरंजन सोई। जो अपने आप होता है, जो होता है बस वही निरंजन है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा, उसका कोई रंग रूप नहीं होता, बस उसी को परमात्मा मान के देखे जा। सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, बाईं से कि दाईं से कि दोनों से कि लंबा कि ओछा, जैसा है वैसा है। यथाभूत दर्शन करेगा तो यथाभूत ज्ञान जागेगा, सम्यक दर्शन करेगा सम्यक ज्ञान जागेगा तो सम्यक विमुक्ति होगी। ये देखने के लिए 3 दिन काम किया। यहीं छोटे से स्थान पर काम करना पड़ता है, स्थान जितना छोटा होगा और जितनी देरी तक उस पर मन टिका सकेंगे, मन उतना ही सूक्ष्म होता जाएगा, तीक्ष्ण होता जाएगा, बींधता हुआ चला जाएगा। सच्चाई के साथ होना चाहिए, हम कल्पना करने लगें तो मन सूक्ष्म नहीं होता, तीक्ष्ण नहीं होता, बींध नहीं सकता, भीतर की सच्चाई को देख नहीं सकता। तो सच्चाई के साथ सांस सच्चाई है, कोई कल्पना नहीं है। इस पर कोई नाम का आरोपण करने लगें, इस पर कोई रूप का आरोपण करने लगें, किसी आकृति का आरोपण करने लगें, किसी दार्शनिक मान्यता का आरोपण करने लगें, तो नेचुरल ट्रुथ नहीं है, क्रिएटेड ट्रुथ हो गया। अपने आप जो प्रकट होता है, आपको आप बस उसी को जानना है, उसको जानते 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 मन इतना सूक्ष्म हो जाएगा, 3 दिन होते होते मन इतना तीक्ष्ण हो जाएगा कि और कुछ महसूस करने लगेगा। सारे शरीर में प्रतिक्षण, शरीर के अणु अणु में प्रतिक्षण कोई ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होती रहती है, जीव रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहती है, कुदरत का नियम है, होता ही रहता है। कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन होती रहती है, विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया होती रहती है सारे शरीर में, हमें कुछ नहीं मालूम होता। लेकिन ये मन जितना जितना सूक्ष्म हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा, महसूस करने लगेगा। तो 3 दिन होते होते 2 बात हुई, एक तो हमने स्थान छोटा रखा, कोई बहुत बड़ा स्थान रखते उस पर मन लगाते तो मन इतना सूक्ष्म नहीं हो पाता, स्थान बहुत छोटा, इसीलिए कहा गया कि नासाग्गे, नास के आगे का जो स्थान है बस वहीं मन को टिकाओ और कहीं नहीं। और दूसरी बात सच्चाई के साथ टिकाओ, यथाभूत जैसा है वैसा है। यूँ करते करते 3 दिन में बड़ा संवेदनशील हुआ, तो इसी स्थान पर नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर इस स्थान पर कोई ना कोई अनुभूति होने लगी, गर्मी सी हो सकती है, सर्दी सी हो सकती है, पसीना सा हो सकता है, कोई खुजलाहट हो सकती है, कोई गुदगुदाहट, कोई सुरसुराहट, कोई झंझनाहट, कोई स्पंदन, कोई धड़कन, कुछ भी हो सकता है, भारीपन हल्कापन, शरीर पर कुछ अनुभूति होने लगी, बस काम बन गया, दरवाज़ा खुलने लगा, मुक्ति का दरवाज़ा खुलने लगा, क्योंकि हम अपने भीतर की सच्चाई को जानने लायक होने लगे। 4th दिन 5th दिन होते होते देखेंगे सारे शरीर पर अनुभूति होने लगी, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, शरीर के अंग अंग में, अंग अंग के अणु अणु में कुछ न कुछ घटना घट रही है, कुछ न कुछ घटना घट रही है, कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है। हम उसे समता से देखेंगे, सारी विद्या ये सिखाती है, अनुभव तो होगा पर उस अनुभव को अच्छा मान करके राग की प्रतिक्रिया करने लगोगे, उस अनुभव को बुरा मान करके द्वेष की प्रतिक्रिया करने लगोगे तो वो अनुभव हमारे क्या काम आया। हमने सच्चाई का अनुभव तो किया पर समता भाव से नहीं किया, मन का संतुलन नहीं रखा। तो ये तो पुरानी आदत थी हमारी, जहाँ सुखद अनुभूति हुई वहीं राग जगाया, जहाँ दुखद अनुभूति हुई वहीं द्वेष जगाया। और देखिएगा इस शरीर प्रपंच में कहीं सुखद अनुभूति है, कहीं दुखद है, कहीं सुखद है, कहीं दुखद है। अरे ये प्रपंच तो चल ही रहा है। और देखिएगा आदत हमने ऐसी बना ली कि सुखद आई तो राग जगाया, दुखद आई तो द्वेष जगाया। सुखद आए तो उसे समेटने का जी चाहता है, दुखद आए उसे दूर करने का जी चाहता है। समेटना धकेलना, समेटना धकेलना, पुल पुश पुल पुश। अरे यही आदत है, यही बंधन है, यही मैल है। सारे जीवन भर यही करते हैं, न जाने कितने जन्मों से किए जा रहे हैं। ऊपर ऊपर के मानस को हमने सुधार लिया। अच्छा भाई, बहुत बुद्धि ने चिंतन किया इसलिए हम राग नहीं करते, हम द्वेष नहीं करते, लगता है हम बड़ी समता में हैं। बड़ा छोटा सा चित्त है, बाकी 95% का भाग उसका, ये तो मुश्किल से 5% होगा। बाकी 95% प्रतिक्षण प्रतिक्रिया कर रहा है, कुछ न कुछ अनुभव होता है उसे। राग की प्रतिक्रिया करता है, द्वेष की प्रतिक्रिया करता है, राग की गांठ बांधता है, द्वेष की गांठ बांधता है, गांठ पर गांठ, गांठ पर गांठ, मैल पर मैल, मैल पर मैल। भीतर के अंगारे जलाए जा रहा है, जलाए जा रहा है। ऊपर एक परत पड़ी है राग की, समझते हैं कि हम तो बड़ी समता में आ गए, ये भजन कर लिया ना इसलिए समता में आ गए, वो कीर्तन कर लिया ना समता में आ गए, ये कर्मकांड कर लिया ना समता में आ गए, वो जाप कर लिया ना समता में आए। समता में कौन सा हिस्सा आया? मानस का केवल ऊपरी हिस्सा आया ना। भीतर वाला हिस्सा तो प्रतिक्षण हमारी शरीर की संवेदनाओं को अनुभव करते रहता है, 24 घंटे रात और दिन। जब से जन्मे हैं जब तक मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाएंगे, जब तक शरीर में जीवन है तब तक शरीर में संवेदनाएं चलती हैं। सुखद चलें, दुखद चलें, सूक्ष्म चलें, स्थूल चलें, कोई ना कोई संवेदना कहीं ना कहीं चलती रहती है। और ये भीतर वाला मन उसे महसूस करते रहता है, अनुभव करते रहता है, और अनुभव करके नहीं रह जाता, प्रतिक्रिया करता है। और इन दोनों के बीच में बहुत मोटी दीवार। तो ऊपर वाले चित्त को, राख वाले चित्त को पता ही नहीं भीतर अंगारे हैं, भीतर कितने विकार इकट्ठे किए हैं और कितने विकार बढ़ाए जा रहे हैं, इसका उसे कतई ज्ञान नहीं। एक उदाहरण से समझें, कोई आदमी रात को गहरी नींद सो गया। कौन सो गया? उसका ये ऊपर वाला चित्त सो गया, जिसको आज पश्चिम का वैज्ञानिक कॉन्शियस माइंड कहता है, चेतन चित्त कहें। अपने यहाँ उसे परित्त चित्त कहा गया, परिमित चित्त, छोटा सा चित्त, वो सो गया। बाकी इतना बड़ा चित्त वो नहीं सोता, वो 24 घंटे जागते रहता है। तो गहरी नींद में सोया है कोई और एक मच्छर ने आके काटा, उस ऊपर वाले चित्त को कुछ नहीं पता कि मच्छर ने काटा है, पर इस भीतर वाले चित्त को तुरंत मालूम हुआ मच्छर ने काटा। तो एक दुखद संवेदना हुई वहाँ पर, नहीं अच्छी लगी उसे, तो प्रतिक्रिया करता है, तो उड़ाता है उस मच्छर को या मार देता है मच्छर को। फिर भी वो चलती है दुखद संवेदना, तो खुजलाता है। ये सारा काम अंतर मन कर रहा है, नीचे वाला मन कर रहा है, ऊपर वाले को कुछ नहीं पता। सुबह उससे कोई पूछे, जब आदमी जाग जाए, अरे आज रात भर तुझे कितने मच्छरों ने काटा? बेचारे को क्या पता मच्छरों ने काटा, उसे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि ये अनुभूति तो अंतर मन को हो रही थी, ऊपर वाला मन तो सोया हुआ था, उसे कुछ नहीं मालूम। और हम तो जीवन जीते हैं ऊपर वाले मन का, भीतर वाले मन तक हमारी पहुँच ही नहीं हुई। एक और उदाहरण से समझें, जैसे अब बैठा हूँ बोल रहा हूँ, अगर विपश्यना नहीं की हो तो क्या होगा? 7.5 घंटे तक बोलते 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 शरीर का वजन कहीं पड़ा, इस तरफ जरा भारी हो गया, भारी हो गया। ये जो मेरा चेतन चित्त है, कॉन्शियस माइंड है, अगर विपश्यना नहीं की हो तो कॉन्शियस माइंड बस ये देखता रहेगा, मैं जो बोल रहा हूँ ये लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे देखता रहेगा। और समझ रहे हैं कि ये उनके सिर पर से चल रही हमारी बातें, तो बेकार क्यों समय खराब करूँ, जल्दी बंद कर दूँ इसको। अच्छा, अथवा कैसे बंद करूँ इस प्रवचन को, कैसे, ये सारा चिंतन चलेगा। लोगों के चेहरों की ओर देखेगा, उस चिंतन करेगा, जो अंदर वाला मन है उसको इस बात से लेन देन नहीं। उसे तो कुछ महसूस हुआ ना, भारीपन है, तो कहता जल्दी बदली कर, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो यूं कर लेगा, यहाँ भारीपन हुआ थोड़ा सा यूं कर लेगा। किसी आदमी को आध घंटे तक देखते जाओ, कभी यूं मचकता है, कभी यूं मचकता है, कभी यूं करता है, अरे क्या हो गया तुझे? उस बेचारे को खुद को नहीं पता क्या हो गया मुझे। ये तो भीतर भीतर का काम है ना, भीतर भीतर का, जिसको अनकॉन्शियस कहते हैं, वो अनकॉन्शियस बिल्कुल नहीं, बहुत कॉन्शियस है। कॉन्शियस इसी बात पर है कि संवेदना क्या हो रही है, अच्छी लगती है उसे समेटना चाहता है, बुरी लगती है, उसे धकेलना चाहता है, ये उसका स्वभाव हो गया, अनेक जन्मों से स्वभाव हो गया और ये खतरनाक स्वभाव हो गया, इस स्वभाव को तोड़ना है, यही मुक्ति है। तो चार दिन पांच दिन होते होते सारे शरीर में संवेदनाएं महसूस होने लगी, तो जो बीच की दीवार थी, जो पर्दा था, वो टूटा। जो बात हमेशा अनकॉन्शियस माइंड को मालूम हुआ करती थी, अब कॉन्शियस को ही मालूम होने लगी। और कॉन्शियस तो बुद्धि से समझता है, भाई प्रतिक्रिया मत कर, राग की प्रतिक्रिया मत कर, द्वेष की प्रतिक्रिया मत कर, ये जो भीतर का मन है अंधा है, इसीलिए इसको जड़ कहते हैं, बिल्कुल अंधा है, ये कोई बुद्धि की बात सुनने को तैयार नहीं। इसने तो केवल दो ही बात सीखी है, एक तो संवेदना को महसूस कर और दूसरा महसूस करके प्रतिक्रिया कर, अच्छे लगे तो राग की कर, बुरी लगे तो द्वेष की कर, तीसरी बात जानता नहीं ये। अब ये दीवार टूटेगी, ये विपश्यना करते करते अपना ज्ञान जगाते जाते, प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, स्वयं अनुभव हो रहा है कि देख ये संवेदना जागी, पहले नहीं मालूम होता था। जिसने कभी विपश्यना नहीं की हो, जिसने कभी प्रज्ञा न जगाई हो, उससे कहें कि तेरे भीतर सारे शरीर में एक चेतना का प्रवाह चल रहा है, एक चेतना की धारा प्रवाह चल रहा है, तो कहेगा क्या चल रहा है, कुछ नहीं, हमें तो कुछ नहीं होता, तुम क्या कहते हो, तो उसको कहने वाला पागल लगेगा। लेकिन जब अनुभव करेगा तो पता लगेगा सारे शरीर में कुछ ना कुछ खदबद 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 कुछ कुछ हो रहा है, ये हो तो रहा है लेकिन उसके साथ साथ प्रतिक्रिया भी कर रहा है। ये समझेगा कि देखिए प्रतिक्षण बदलने वाला कुछ ना कुछ घटना घट रही है, और अब हम इसको समता से देखेंगे, राग नहीं जगने देंगे, द्वेष नहीं जगने देंगे। घंटे भर अभ्यास करेगा तो पुरानी आदत है, ऐसे ही राग जगाएगा, द्वेष जगाएगा, पर बीच बीच में थोड़े थोड़े क्षण मिलेंगे उसे जब राग नहीं जगाता, जब द्वेष नहीं जगाता, बस समता से देखता है जो हुआ, अरे ये भी तो अनित्य है, देखें कितनी देर रहता है, ये भी तो अनित्य है, देखें कितनी देर रहता है, देखते देखते समाप्त हो जाता है। कोई अनुभूति हमारे भीतर ऐसी नहीं होती जो अनंत काल तक वैसी ही बनी रहे, उत्पन्न होती है देर सवेर समाप्त हो जाती है, उत्पन्न होती है देर सवेर समाप्त हो जाती है, ये सारा प्रपंच साक्षी भाव से देख रहा है। तो अपने पुराने स्वभाव के शिकंजे को तोड़ रहा है, पुरानी आदत जो पड़ गई थी कि जब देखो तब प्रतिक्रिया करो, जब देखो तब प्रतिक्रिया करो, ये आदत अब टूटते जा रही है, तो चित्त निर्मल हुए जा रहा है, विमुक्त हुए जा रहा है, खूब समझ में आने लगेगा। 10 दिन में एकदम पारंगत हो जाओगे, 10 दिन में अरहंत अवस्था तक पहुंच जाओगे, बुद्ध की अवस्था तक पहुंच जाओगे, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, अनासक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, ऐसी आशा लेके नहीं आना चाहिए, ऐसा विश्वास भी नहीं दिलाया जाता। पर अपने भीतर देखने का पहला कदम तो उठ गया, अपने भीतर कल्पना को नहीं देख रहे हैं, अनुभूतियों को देख रहे हैं, अनुभूतियों से देख रहे हैं, तो चलते 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 परम सत्य का अनुभव कर लेंगे। इसीलिए इस रास्ते चलने वालों ने कहा, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक हो सी भी सच। शुरू सच से करो और सच ही के सहारे 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 चलो, परम सत्य तक पहुंच जाओगे, ये सच खंड की यात्रा हो जाएगी, स्वयं सच नाम बन जाओगे। बुद्ध को सच नाम कहा जाता था, वही आगे जाकर सत्य नाम चला, सच नाम। नाम कहते थे चित्त की धारा को, चित्त की धारा सच्चाई के साथ जुड़ गई, किम सचियारा हो विए, प्रतिक्षण सच्चाई के साथ है, कल्पना को नजदीक नहीं आने देवे, यूं ऐसा सच्चाई के साथ रहने वाला व्यक्ति जो अनुभव हो रहा उसके सहारे सहारे चलते चलते परम सत्य तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सच्चाई के सहारे चलते चलते विकार दूर होने शुरू हो जाएंगे, स्वभाव भीतर का स्वभाव पलटना शुरू हो जाएगा। आरंभ जब होता है तो बहुत स्थूल स्थूल सच्चाइयाँ हमारे सामने आती है, बहुत स्थूल स्थूल सच्चाइयाँ, कहीं बहुत भारीपन सा लगा, कहीं बड़ा दुखाव सा लगा, कहीं बड़ी गर्मी सी लगी, कहीं पसीना सा लगा, अरे आरंभ तो ऐसे ही होगा। शरीर ने अपना धर्म हमारे सामने प्रकट किया कि देख मैं गर्माता भी हूँ, देख मैं पसीजता भी हूँ, देख मैं भारी भी होता हूँ, और हम उसे कहे तुझे नहीं देखना, हम तो कोई और सूक्ष्म बात देखनी है, कोई बहुत आनंद की बात देखनी है, तो न ये नहीं मिलेगा न वो मिलेगा। जो उत्पन्न हुआ इस क्षण हमारे सामने जो उत्पन्न हुआ उसे स्वीकार किया और समझा कि देख भाई ये भी तो अनित्य है, कब तक रहेगा देखें, देखते देखते खत्म हो गया, कुछ दूसरा उत्पन्न हुआ वो खत्म हो गया, यूँ देखते 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 किसी किसी को पहले ही शिविर में, किसी को दूसरे या तीसरे शिविर में ऐसी अवस्था आती है कि शरीर की जो सघनता है, जिसके अंदर अपना ज्ञान नहीं जागा, अपनी अनुभूति नहीं जागी, उसको हमेशा अपना शरीर बड़ा ठोस नजर आएगा, और ठोस है ये भी एक सच्चाई है, सारा शरीर बड़ा ठोस है, पर ये ऊपर ऊपर की सच्चाई है, भीतर की सच्चाई कुछ हो रही है। भीतर की सच्चाई कि सारा का सारा शरीर परमाणुओं का पुंज है, नन्हे नन्हे परमाणु जो हमारी आंखों से भी नहीं दिखाई दे, एक सुई की नोक पर करोड़ों की संख्या में आ जाए, ऐसे परमाणुओं से बना हुआ शरीर, सारा भौतिक शरीर। और वो परमाणु भी स्थिर नहीं रहते, प्रतिक्षण उनमें उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, तरंग ही तरंग, तरंग ही तरंग। ये हिमालय का देश बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा पुण्यशाली है। हिमालय की पावन धरती पर न जाने कितने संत तपते हैं, कितने ऋषि, कितने बोधिसत्व। इस धरती ने एक महापुरुष को जन्म दिया है, ऐसे महापुरुष को जो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ, इतना बड़ा साइंटिस्ट आज तक दुनिया ने नहीं पैदा किया, सुपर साइंटिस्ट, जिसने माइंड और मैटर के सारे रहस्य को खोल खोल के देख लिया क्या होता है। तो अंदर सारी सच्चाई को देखते 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 देखता है केवल परमाणु ही परमाणु, परमाणु ही परमाणु, और वो उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, केवल तरंगे ही तरंगे, जैसा भीतर वैसा बाहर, सब जगह एक जैसी बात। तो कहता है सब्बा पज्जलितो लोको सब्बो लोकोपकंपितो, सब्बो पज्जलितो लोको सब्बो लोकोपकंपितो, पकंपितो, केवल प्रकंपन ही प्रकंपन है, प्रज्वलन है प्रकंपन है, प्रज्वलन है प्रकंपन, और कुछ नहीं, ठोस पकड़ने के लिए कुछ नहीं, केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। साधना करते 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 हर साधक इस अवस्था पर पहुंचता है जहां इस सारे का सारा ठोसपना समाप्त हो गया, सब भंग ही भंग, तरंगे ही तरंगे और कुछ नहीं। मानस भी घनीभूत होकर के आएगा, कोई बड़ा भावावेश जागा, क्रोध का जागा कि वासना का जागा कि भय का जागा कि अहंकार का जागा, उसे देख रहा है, अच्छा ये भय का भावावेश जागा, संवेदना क्या हो रही है उसे भी देख रहा है, संवेदना क्या हो रही है, देखते देखते पिघलने लगेगा, पिघलने लगेगा, डिवाइडिंग डाइसेक्टिंग डिसइंटीग्रेटिंग डिजॉल्विंग, यूँ होते 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 टुकड़े करते 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 एकदम तरंगे ही तरंगे रह जाएंगे, सारा शरीर भी तरंग ही तरंग, सारा चित्त भी तरंग ही तरंग। ऐसी अवस्था जब आएगी तब बहुत अच्छी तरह से सारा प्रपंच समझ में आने लगेगा। समय लगता है, ये आशा नहीं करनी चाहिए कि 10 दिन में इतना पक जाएगा, लेकिन ये मार्ग वहाँ तक ले जाएगा। एक और ये सारा शरीर का प्रपंच समझ में आएगा कि चाहे हड्डी है चाहे मांस है चाहे चमड़ी है चाहे केश है चाहे कुछ है, सब केवल तरंग ही तरंग है, परमाणु ही परमाणु। अनुभव होगा, पुस्तकों की बात नहीं, पुस्तकों की बात से भ्रम ही भ्रम होगा, अनुभव की बात से काम की बात होगी। इसीलिए संत ने कहा कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुलझावन वाली, ओ तू क्यों रहा उलझाए रे। मैं सुलझाने की बात करता हूँ, तू भी इसी प्रकार देखना शुरू कर जाएगा, सब कुछ सुलझ जाएगा तेरे लिए, केवल पुस्तकें पढ़ता चला जाएगा और पुस्तकों के बल पर समझेगा कि मैं तो सब कुछ जान गया, केवल प्रवचन सुनता चला जाएगा और समझेगा मैं सब कुछ जान गया। अरे भाई नहीं जाना रे, मान लिया तूने कुछ मान लिया, जाना नहीं, जानने और मानने में जमीन आसमान का अंतर है। जब जानने लगेगा तो सारा प्रपंच समझ में आएगा, शरीर कुछ नहीं है केवल तरंगे तरंगे, परमाणुओं की तरंगे तरंगे तरंगे, चित्त क्या है। बहुत ऊंची अवस्था पर पहुंचेगा तो देखेगा 121 प्रकार के चित्त हैं, देखेगा 52 प्रकार के चित्त वृत्तियां हैं। इस क्षण ये चित्त उत्पन्न हुआ, इस चित्तवृत्ति के साथ उत्पन्न हुआ, अगले क्षण ये चित्त उत्पन्न हुआ, इस चित्तवृत्ति के साथ उत्पन्न हुआ, यूँ सारा रहस्य समझ में आएगा। पर नए नए साधक को उस अवस्था की कल्पना करनी भी खतरनाक, करना भी नहीं चाहिए। जो जो अनुभव हो रहा है उसके सहारे आगे चलना है। तो पहला अनुभव यही होगा कि मानस के 4 मोटे मोटे खंड सामने प्रकट होंगे, अनुभूति के स्तर पर प्रकट होंगे। उन दिनों की भाषा में उन चारों को कहा विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार। क्या विज्ञान? ये जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन पर बाहर का कोई विषय टकराता है, आँख से कोई रूप टकराया, कान से कोई शब्द टकराया, नाक से कोई गंध टकराई, जीभ से कोई रस टकराया, शरीर से कोई स्पर्शीय पदार्थ टकराया, मन से कोई कल्पना या कोई चिंतन टकराया। टकराते ही मानस का ये हिस्सा, पहला हिस्सा अपना सिर उठाएगा, कुछ हुआ, कुछ खटपट हुआ, कान के दरवाजे पर हुआ कि नाक के दरवाजे पर हुआ, किसी दरवाजे पर कुछ खटपट हुआ, उसको उन दिनों की भाषा में कहा विज्ञान। इतने में मानस का दूसरा खंड अपना सिर उठाएगा, क्या हुआ रे, ये कान में जो आवाज आई क्या आवाज आई, आंख से जो रूप दिखा वो कैसा रूप दिखा, ये गंध कैसी आई, वो अपनी पुरानी अनुभूतियों के बल पर पहचानेगा। उसे संज्ञा कहा, पहचानेगा ही नहीं मूल्यांकन भी कर देगा। शब्द आया, गाली का शब्द है बहुत बुरा, प्रशंसा का शब्द बहुत अच्छा, रूप दिखा बहुत खूबसूरत है बड़ा अच्छा, बड़ा बदसूरत है बहुत बुरा, यूं मूल्यांकन करेगा। वो जैसे ही मूल्यांकन करेगा, ये सारे शरीर में एक तरंग चलती है, जब कान से शब्द टकराए कि आंख से रूप टकराए कि नाक से गंध टकराए, टकराती एक नई तरंग चल पड़ी, सारा का सारा शरीर, सारा का सारा चरण चित्त तरंग ही तरंग है, पकंपितो पकंपितो पकंपितो, बाहर बाहर भी तरंग ही तरंग है सारे विश्व में, और वो एक तरंग इस तरंग से टकराई तो एक और नई न्यूट्रल तरंग चल पड़ी। जब कोई विषय हमारे इंद्रिय से टकराता है तो एक न्यूट्रल तरंग हमारे शरीर में चली, और मानस के इस दूसरे खंड ने कह दिया कि ये तो बहुत अच्छा है तो यही तरंग बड़ी सुखद हो जाएगी, और उसने कह दिया बहुत बुरा है तो यही तरंग बड़ी दुखद हो जाएगी, तो मानस का तीसरा हिस्सा उसे वेदना कहा, माने वो अनुभव करता है, सुखद है तो सुख अनुभव करता है, दुखद है तो दुख अनुभव करता है। इतने में चौथा अपना सिर उठाता है, उसे संस्कार कहा, क्योंकि वो कर्म संस्कार बनाता है, वो प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही अनुभूति सुखद हुई वो कहेगा चाहिए चाहिए चाहिए, राग पैदा करेगा, जैसे ही अनुभूति दुखद हुई वो कहेगा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, द्वेष पैदा करेगा। ये जो चौथा है बड़ा खतरनाक है, और ये चौथा बड़ा बलवान है, इसको हम कैसे दुर्बल बनाएं, सारी साधना इसीलिए है। अब जानेगा, सुखद जागी है तो भी राग नहीं जगाएंगे, दुखद जागी है तो भी द्वेष नहीं जगाएंगे, क्योंकि राग जगाया कि द्वेष जगाया तो लगे बंधन बंधने, लगे बंधन बंधने। यही बात बिना अनुभव के समझ में नहीं आ सकती। बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, बचपन से गीता का पाठ करता है, अनेक लोग करते होंगे, एक श्लोक गीता का, अरे विपश्यना ही विपश्यना भरी पड़ी, लेकिन कभी विपश्यना की नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या श्लोक है,
उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः।
मूढ़ लोग देख ही नहीं पाते, विपश्यना ही नहीं कर पाएंगे, अंदर का ज्ञान का चक्षु खुलेगा तब विपश्यना कर पाएंगे, तब बात समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी, उत्क्रामंतं, किसी इंद्रिय के दरवाजे पर कोई घटना घटी तो मानस का एक हिस्सा सिर उठाया, उत्क्रामंतं, उत्क्रमण हुआ उसका, दूसरा हिस्सा स्थितं, अब वो रुक करके देखता है क्या हुआ, तो फिर संवेदना चलेगी, सुखद चलेगी दुखद चलेगी, तो भुंजानंग लगा उसे भोगने, सुखद चली तो सुख भोगने लगा उसका, दुखद चली दुख भोगने लगा, और गुणान्वितं लगा बंधने लगा, अरे यही बंधन है भाई, उसका पाठ करने से क्या समझेगा कोई। अच्छा उसका अर्थ भी ठीक ठीक समझा दिया, अर्थ भी नहीं समझाते लोग, क्योंकि किया ही नहीं किसी ने अनुभव तो क्या समझाएगा, समझा भी दिया हमें कहा क्या पल्ले पड़ा हमारे, हम स्वयं अनुभव करेंगे तो जानेंगे कि देख अमुक दरवाजे पर कोई घटना घटी और उसका मूल्यांकन सही हुआ कि गलत हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, और ये संवेदना हमारी शुरू हुई, सुखद हुई कि दुखद हुई, और देख प्रतिक्रिया करने लगे, राग जगाने लगे द्वेष जगाने लगे, बस वहीं रोक लगनी शुरू हो गई, स्वभाव पलटना शुरू हो जाएगा। घंटे भर की बैठक में न जाने कितनी बार राग ही जगाओगे द्वेष ही जगाओगे, पर कोई कोई क्षण मिलेंगे जब राग भी नहीं जागता द्वेष भी नहीं जागता, बिल्कुल समता में है। कोई कोई क्षण बढ़ते बढ़ते कोई कोई सेकंड हो जाएगा, कोई कोई सेकंड बढ़ते बढ़ते कोई कोई मिनट हो जाएगा, कोई कोई मिनट बढ़ते बढ़ते पूरा घंटा हो जाएगा। काम स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, कर नहीं सकता। इस धोखे में कभी नहीं रहना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझ करके, अहंकार नहीं जगाना कि मैं अपने आप को मुक्त कर लूँगा, मेरी जिम्मेदारी है भाई, मैंने अपने कपड़े को मैला किया मुझको साफ़ करना है, मैंने अपने मन को मैला किया मुझे साफ़ करना है, ये विद्या मिल गई और अब मुझे अपने आप को निर्मल करना है। काम करना होगा, खूब काम करना होगा। आज के सभा में जो जो आए हैं सचमुच सब में धर्म का बीज है, इसलिए आए हैं, और देर सवेर हम खूब जानते हैं कि जिन जिन के पीछे बहुत बड़ा पुण्य है
उन्हें कहना नहीं पड़ता, अपने आप खींचे हुए चले आते हैं और ये भीतर का दर्शन करते करते, भीतर सत्य का दर्शन करते करते, अपने बंधनों से मुक्त होते होते, अपने दुखों से मुक्त होते होते परम मुक्त अवस्था तक पहुँच ही जाएंगे। जो आए सब अपने अपने दुखों से मुक्त हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। Mostly gurus give importance to body and mind, but in vipassana body is neglected. Oh no, in vipassana body is the most important part of our meditation. Entire meditation is based on body and the sensations on the body. All the four factors, the body, the sensation on the body, the mind, and whatever is held by the mind, all these four go together in vipassana. There were such gurus who assured that their disciples will be guided even after his death. Yes, it is only the Dhamma which will guide. Initial guidance is given by a guru, if he is a good guru, real guru. Then you walk on the path, and then the path will lead you to the final goal. You will get yourself all the knowledge by your own experience. I would like to request you to send an efficient assistant teacher every 3 or 6 months so that Dhamma vibrations remain strong in the center and students get benefited. Of course, people will be coming, but I would like more and more teachers to get trained here in this country. It's a Dhamma country. Let there be more teachers, local teachers, who can give you better service. Man mein jalan, irsha, moh, lobh ko kaise hatayen? Yahi nahi, sare vikaron ko hatane ka ek hi tarika hai. Kisi prakar ka vikar man mein jaag jaye, शरीर पर एक संवेदना लेकर ही जागेगा। बिना संवेदना के मन में कुछ नहीं जाग सकता। एक शब्द भी मन में जागेगा तो एक संवेदना होगी, विकार जागेगा मन में संवेदना होगी, और उस संवेदना को हम साक्षी भाव से देखते रहेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तो ये सारे के सारे विकार जब जागेंगे हम उसे देखते देखते उससे मुक्त हो जाएंगे। हिप्नोटिज्म से हम मन को वश में कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, लेकिन बहुत गलत तरीका है, धर्म के बिल्कुल विरुद्ध तरीका है। धर्म चाहेगा कि हम सच्चाई के सहारे चलें, वो सच्चाई जो अपने आप हो रही है, आपो आप, और जो सजेशन द्वारा होती है वो सच्चाई नहीं है, वो कल्पना है, वो धोखा है, उससे बचना चाहिए विपश्चित साधक को। ऐसे महत्वपूर्ण अभ्यास बच्चों के लिए कैसे कराए जाए? स्कूलों में इनका प्रयोग शुरू हुआ है और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ी है, उनको अपने विषय समझने की शक्ति बढ़ी है, उनका नर्वसनेस दूर हुआ है, उनका चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा काम हुआ है इस विद्या से, तो स्कूलों में कॉलेजों में इसका प्रवेश होना ही चाहिए। आपका प्रवचन में स्वर्ग और नरक की कहानियों की बात, ये बकवास कहा। फिर और प्रवचन में देवलोक, ब्रह्मलोक, अच्छा कर्म करने वाला ये स्वर्ग देवलोक नहीं है। अरे नहीं भाई, हमने नहीं कहा कि ये बकवास है। हम कहते हैं कि आदमी को पहले पहले धर्म की बात सिखाने के लिए ये देवलोक के नरक लोग जो सच है उनकी बात कहनी पड़ती है, कि उतने से जरा शुरू तो हो बात, लेकिन उतने से मुक्ति नहीं मिलती। वो तो धर्म की ओर आमुख करने के लिए आगे जाकर के तो अपनी सच्चाई खुद भीतर देखनी पड़ेगी, तब देखेगा भीतर नरक कैसा नरक लिए चल रहा हूँ, भीतर स्वर्ग कैसा स्वर्ग भी लिए चल रहा हूँ, तो अपना स्वर्ग स्वयं बनाएगा, अपने नरक को स्वयं दूर करेगा। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद मांस खाया कि नहीं? बुद्ध मुक्त हुए कि नहीं, ये बात पूछते तो काम की बात होती। मांस खाया कि नहीं, उससे क्या मिला भाई तुम्हें? भिक्षु है ना वो, बगैर हैव नो चॉइस, वो तो अपने भिक्षा पात्र में जाकर के जहाँ कुछ जाएंगे, जिस घर के सामने भिक्षा पात्र में जो आएगा सो खाएंगे, लेकिन लोगों को मांस खाने के लिए प्रेरित नहीं करते थे। मेरी माँ 3-4 बार शिविर जा चुकी है, तब भी घर में मदिरा बनाती है, तो भाई उसने कर्मकांड ही किया, विपश्यना नहीं की। सचमुच विपश्यना कोई करेगा तो मदिरा की वाइब्रेशन काटने लगेगी उसे, वो उसके समीप नहीं रह सकता, तो उस बेचारी को फिर भेजो, और उसी को मत भेजो, तुम भी आओ। केवल उसको भेज करके चाहते हो कि वो सुधर जाए, हम तो खूब सुधरे हुए हैं,
सबको सुधरना है, खुद भी चले आओ। मृत्यु पश्चात 84 लाख योनियों में से घूमकर ही मनुष्य योनि में जन्म लेता है, ये किसने कह दिया? सुनी सुनाई बातें हैं। चाहे जब जन्म ले सकता है, जैसे जैसे मृत्यु का क्षण कैसा आया, मृत्यु के क्षण अगर हमारे चित्त में ऐसा विकार जागा जो पशुओं के स्वभाव वाला है, पक्षियों के स्वभाव वाला है, नरक के स्वभाव वाला है, तो उसी ओर खींच के ले जाएगा। और मृत्यु के समय ऐसा जागा जैसे विपश्यना जागी, संवेदना मालूम हो रही है, समता है, तो मनुष्य जीवन ही मिलेगा, देवलोक ही मिलेगा, नीचे का लोक मिल नहीं सकता क्योंकि वहाँ विपश्यना कर नहीं सकता। आत्मा की उपस्थिति सभी अनुभव करते हैं। आत्मा की ओरिजिन और अस्तित्व के बारे में कुछ कहिए। अनुभव नहीं करते भाई, कल्पना करते हैं। मन के जो चार हिस्से हैं ना, जब जाओगे भीतर और उनको अलग अलग करके देखोगे तो उन्हीं में से किसी हिस्से को आत्मा कहने लगे और तब साफ मालूम होगा कि ये तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। जैसे प्याज के छिलके को छिलते जाओ भीतर कुछ नहीं, जैसे केले के खंभे को छिलते जाओ भीतर कुछ नहीं, ऐसा ही होगा। पर यह करने से होगा, हमारे कहने से मत मानो। चोरी की हुई वस्तु की जब याद आता है तो देखता हूँ कि मन में बेचैनी छा जाती है, तो आगे तो मत करना कभी, बेचैनी क्यों छाए। विपश्यना ध्यान में रखते हुए समय भगवान का स्मरण तथा भक्ति कितनी आवश्यक है। किस भगवान का स्मरण करोगे भाई? तुमने सुन लिया ऐसा एक भगवान है, चाहे बुद्ध ही भगवान हो, तुमने देखा तो नहीं ना। किसी कलाकार ने कोई मूर्ति बना दी, किसी मूर्तिकार ने, कलाकार ने चित्र बना दिया, ये तो उसकी कल्पना है ना। वही कल्पना अपने मन में लाओगे, ऐसे बुद्ध भगवान है या ऐसे अमुक भगवान है, अमुक भगवान है। सच्चाई कहाँ, सच्चाई से दूर हो गए ना। जो अनुभूति उतर रही है अपने भीतर, अपने अनुभव से शरीर पर क्या हो रहा है, संवेदना जो होती है शरीर पर, पुरानी भाषा में इसको अनुभवन कहा, वेदन का नाम ही अनुभवन, अनुभव हो रहा है, बस उसी के सहारे चलो तो परम अवस्था तक पहुंच जाओगे। 10 दिन के शिविर में जाने में परिस्थिति ने साथ नहीं देने वाले लोगों को आप विपश्यना के ध्यान करने की छोटा तरीका क्यों नहीं सिखाते? ये छोटे से छोटा तरीका है। आज के कोई 60-70 वर्ष पहले विपश्यना के शिविर 1.5 महीने के लगा करते थे, उससे कम के नहीं। फिर आज की ये भाग दौड़ की दुनिया में इन आचार्यों ने देखा कि भाई 1.5 महीने के लिए तो कोई समय नहीं निकाल पाएगा, तो उसको घटा के 1 महीना किया, तो कुछ थोड़ा पल्ले पड़ने लगा। और घटाया, 20 दिन किया, कुछ पल्ले पड़ा। 15 दिन किया, 10 दिन किया, तो थोड़ी सी रूपरेखा मालूम होती है। उससे कम किया तो कुछ नहीं पल्ले पड़ता। तो भाई कुछ पल्ले पड़ना चाहिए ना, तो इसलिए 10 दिन से कम में कोई बात बनती नहीं। चाहते तो हम भी हैं लेकिन होता नहीं। आप कहते हैं चित्त को निर्मल करने के लिए पहले अपने आप को जांच करना होगा, कैसे? यही तो विपश्यना सिखाएगी ना, कि हमने चित्त को खाली ऊपर ऊपर से देखना तो हम भले सीख जाए, अंतर मन की गहराइयों तक उसे देखना हो तो इन संवेदनाओं के सहारे देख सकेंगे, और संवेदना के सहारे देखने का काम ही विपश्यना है। शिविर में आओगे तो खूब मालूम होगा। कोई भी अहंकार आदमी को कैसे समझाएं? तुम्हारे समझाने से अहंकारी आदमी समझेगा नहीं। अगर तुमने अच्छी विपश्यना की है और अपने चित्त को जहाँ तक हो उसका निर्मल किया है, तो विपश्यना के अंतिम दिन एक विद्या और सिखाते हैं, मंगल मैत्री की विद्या, करुणा की विद्या। तो जब अपनी ओर से शुद्ध चित्त से मैत्री की तरंगे उसको भेजोगे, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो, तब देखोगे उसमें कुछ परिवर्तन आने लगा। समझाने से अहंकार आदमी समझता नहीं, अहंकार जो है कैसे समझने देगा। कोई भी मनुष्य एक बार मरता ही है, फिर भी मनुष्य ने मैं मेरा क्यों नहीं छोड़ता? इसीलिए तो विपश्यना कराते हैं कि मैं मेरा नहीं छोड़ता, इसीलिए बंधन पर बंधन, व्याकुलता पर व्याकुलता, विकार पर विकार ये करने लगेगा तो अपने आप मैं मेरा छुटता चला जाएगा, उपदेशों से नहीं छुटता। धार्मिक संस्था में राजनीति क्यों, धर्म के नाम पर राजनीति क्यों? दुर्भाग्य है, धर्म जब पंडे पुजारियों के हाथ में रहा तो उनके कारण बहुत शोषण हुआ आम लोगों का। अब राजनेताओं के हाथ में गया तो भी शोषण हुआ। तो भाई अगर धर्म सचमुच आ जाता है, राजनेताओं में आ जाता है, राजनीति में आ जाता है, तो बड़ा कल्याण हो जाएगा। धर्म आना चाहिए, संप्रदाय नहीं। धर्म आएगा अपने आप निर्मल चित्त हो जाएगा, जो काम करेंगे अच्छा करेंगे, लोक कल्याण के लिए करेंगे, धर्म से घबराएं नहीं। धर्म हर जगह आना चाहिए, समाज के हर अंग में धर्म आना चाहिए, हर प्रवृत्ति में धर्म आना चाहिए। विपश्यना ध्यान करने के लिए लड़का या लड़की कितने वर्ष की होनी चाहिए? जन्मने के पहले करना चाहिए, जब माँ के पेट में हो। आजकल तो इसकी बड़ी चर्चा पश्चिम देशों में हो गई कि गर्भवती माँ शिविर में आती ही है, क्योंकि उसको अपने साथ साथ उस गर्भ के संतान को भी धर्म का बीज मिल जाता है, वो तरंगे मिल जाती है। और जब उसका जन्म होता है तो एक तो कम कठिनाई से होता है, वो एक बात हुई, लेकिन वो बच्चा वो बच्ची तो कहती हैं पश्चिम की जो माताएं हैं, आई गॉट नाउ ए धम्मा बेबी, ए धम्मा बेबी, इतना शांत, इतना सुखी, सारा जीवन सुखी रहेगा, अभी से धर्म के बीज मिल गए। लेकिन वैसे 7-8 बरस के बच्चे आनापान शुरू कर देते हैं, 13-14-15 वर्ष के बच्चे कोई कोई विपश्यना शुरू कर देता है, 16-17 के तो कर ही पाएंगे, उसमें कोई कठिनाई होती ही नहीं। विपश्यना किया हुआ कोई भी आदमी क्या स्वभाव अच्छा होता, उनका स्वभाव और ख़राब हो गया, कैसे होगा? तो विपश्यना नहीं की। विपश्यना के नाम पर भी बहुत धोखे चलते हैं। सचमुच जैसे विपश्यना करनी चाहिए वैसी करेगा तो बुरे स्वभाव वाला अच्छे स्वभाव वाला हो जाएगा, अच्छे स्वभाव वाला बुरे स्वभाव वाला हो गया तो समझो विपश्यना नहीं की, विपश्यना के नाम पर और किसी जंजाल में फंसा रहा। शील सदाचार के जीवन और आजीविका के जीवन में क्या अंतर है? आजीविका सम्यक होनी चाहिए, शील सदाचार वाली होनी चाहिए। जैसे कल भी समझाया कि जो रोजी पेशे में जो व्यक्ति है उसके पास जो धन आता है वो समाज से आता है, तो उसका जो ग्राहक है वो उसका अन्नदाता है, उसके साथ कभी धोखा नहीं करे, न क्वालिटी में न क्वांटिटी में। तो विपश्यना का पहला कदम अपनी आजीविका में आने लगा, और धीरे धीरे जैसे आमदनी होती है उस आमदनी का एक हिस्सा वो लोक कल्याण में लगाए। कम कमाता है तो कम हिस्सा लगाए, ज़्यादा कमाता है ज़्यादा हिस्सा लगाए, बस देखेगा कि अहंकार नष्ट हो रहा है और विपश्यना में आगे बढ़ रहा है। दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में आपने जो विश्वास लगाया, शिविर लगाया, ऐसी कोई योजना नेपाल में भी शुरू होनी चाहिए, सभी जगह होनी चाहिए। हम तो कहते हैं गए वहाँ पर, 1000 बंदियों का शिविर लगा, इसके पहले भी 100-150 का शिविर कहीं लगे। हम उनको भी समझाते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि जो जेल की चार दीवारी में बंद हैं वही बंदी नहीं हैं, जेल के बाहर जितने लोग हैं सब बंदी हैं, अपने अपने विकारों के सब बंदी हैं। अरे इस बंधन के बाहर निकलना है ना, जीवन में सारा जीवन हमारा बंदी के रूप में बीतेगा, हम मुक्त नहीं होंगे, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क हुआ? उन बेचारों को तकलीफ इस मारे ज़्यादा है कि वो अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं, उनको परिवार की घर की सुख सुविधा नहीं मिलती, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी वो भी उतने ही बंदी हैं जितने हम बंदी हैं, बाहर के लोग बंदी हैं, इस बंधन के बाहर निकलना ही चाहिए। विपश्यना किस समय और कितने बार करना होगा? एक शिविर करोगे तो वहाँ सब समझाएंगे कि 10 दिन के बाद कैसे करोगे, क्या करोगे, कब करोगे। एक बात बताइए कि मैं धर्म का कानून को ज़्यादा मानूँ या मुलक के कानून को? दोनों ही मानो भाई, क्यों कानून तोड़ो? लेकिन जहाँ पर ऐसी दुविधा हो तो धर्म को प्रमुखता देनी होगी, क्योंकि मुल्क के कानून को तोड़ करके कोई व्यक्ति दंड से बच भी सकता है, लेकिन धर्म के कानून को तोड़ करके कोई भी दंड से नहीं बच सकता, उसको दंड भोगना ही पड़ता है। इसलिए पहले अपने आप को कुदरत का कानून जो है उसके अनुसार तो ढालना सीखें, फिर देखेंगे मुल्क के कानून को ही मानना आसान हो जाएगा। आपके विपश्यना और सियाडो ऊ पंडित के विपश्यना के नियम बहुत फर्क हैं, ऐसा क्यों? अरे नहीं भाई, काहे की फ़र्क है, विपश्यना विपश्यना है। कोई आरंभ एक तरीके से करता है, कोई आरंभ दूसरी तरीके से करता है, आगे जाकर तो एक बिंदु पर मिल जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वही मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। तो किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, जिसको जो सूट करे, किसी को अगर वो तरीका सूट करता है, अनुकूल लगता है उसको करे, जिसको ये तरीका ठीक लगता है, अनुकूल लगता है वो इसको करे, कभी परस्पर विरोध की बात नहीं करनी चाहिए। सम्मोहन क्या है? ये जो ऑटो सजेशन है, हिप्नोटिज्म है, ये सब सम्मोहन है, ये धर्म के विरुद्ध है, इनसे बचना चाहिए। मैं एक विद्यार्थी हूँ, जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो और घटना याद आती है, ऐसा कैसे दूर हो? उन घटनाओं का मन पर बहुत गहरा छाप पड़ी हुई है, और उन घटनाओं को याद करके प्रतिक्रिया करने की आदत बनी हुई है। विपश्यना करोगे तो वो घटना भले याद रहेगी लेकिन प्रतिक्रिया करने की आदत निकल जाएगी, तुम्हारा पढ़ाई में मन खूब लगने लगेगा। क्या आर्थिक समस्या होने वाले लोग विपश्यना का लाभ उठा सकते हैं? उठाते हैं, उठाना ही चाहिए। जैसे बार बार कहता हूँ कि अगर धर्म केवल धनवानों का हो गया तो धर्म धर्म नहीं रहेगा, धर्म सबका होता है, धनवान हो चाहे निर्धन हो। निर्धन व्यक्ति भी विपश्यना में आकर के एक बार तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं, जो रोज़ कमाएं रोज़ खाएं वो 10 दिन तक कमाना बंद कर दें, कितनी कठिनाई होगी उनको, लेकिन 10 दिन आकर के देखते हैं कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। बम्बई जैसे स्थानों पर जहाँ इतने लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं तो शिविरों में 20% 25% लोग उन झोपड़पट्टियों को आते हैं, इतने गरीब जाते हैं, तो क्या सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि उनकी जो छोटी सी कमाई होती है उसका बहुत सा हिस्सा नशे में खो देते हैं, जुए में खो देते हैं, मटके में खो देते हैं, अब वो सारा छूट जाता है, तो घर वाले खुश होते हैं, खुद खुश होता है, जो कमाई भले थोड़ी थी अब उसका सदुपयोग होने लगा, और जो काम कर रहा था अब उसमें मन लगने लगा और उसका प्रमोशन होने लगा। तो हर तरह से लोकीय जीवन में भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता ही है। क्या हम लोग जो कोई भी मंत्र का जाप करते हैं भी क्या वो विपश्यना का छोटा सा अंश नहीं है? मन को अगर एकाग्र करना हो तो मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं, क्योंकि बार बार मंत्र को दोहराते 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 मन एकदम एकाग्र हो जाएगा। लेकिन जैसे बार बार समझाता हूँ मैं कि एकाग्र कर लेना ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य चित्त को निर्मल करना है, तो ऐसे आलंबन से एकाग्र होना चाहिए जो हमको निर्मलता की ओर ले जाए। मंत्र से एकाग्र हो जाएगा, मन का ऊपर ऊपर का हिस्सा निर्मल भी होगा पर अंदर गहराइयों तक जाने में हमारे लिए कठिनाई खड़ी हो जाएगी, हम एक नई दीवार खड़ी कर देंगे जो हमको अंतर मन तक नहीं जाने देगी। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, हमने सारे उस तरह के उपयोग भी किए हैं और ये भी किया है, दोनों के फर्क को खूब जानता हूँ। समता क्या है? समता यही है कि अच्छा लगे तो राग नहीं पैदा करें, बुरा लगे तो द्वेष नहीं पैदा करें, तो चित्त संतुलित रहा, उसी को समता कहते हैं। आपकी विपश्यना का नियम बड़ा कड़क है, बल्कि सियाडो का ऐसा नहीं है, आखिर क्यों? हम क्या बताएं, हम तो ऐसी कड़क नियम को पालन करके ही हमें जो कुछ प्राप्त हुआ सो हुआ, तो इसलिए हम वैसे ही सिखाते हैं लोगों को और देखते हैं बहुत अच्छे परिणाम आते हैं, दूसरे किसी के साथ तुलना नहीं करते, हमारा काम नहीं वो। हमको एक विद्या मिली और बड़े सौभाग्य से ये विद्या ब्रह्मदेश में गुरु शिष्य परंपरा द्वारा यथाभूत जैसे गई वहाँ पर, किसी भी आचार्य ने अपने गुरु के पास प्राप्त की हुई विद्या में न कुछ जोड़ा न कुछ तोड़ा, वैसे के वैसा गुरु शिष्य परंपरा से चली आई। इसलिए अब जब बुद्धवाणी पढ़ते हैं तो एकदम मेल खाता है, एक एक बात एकदम मेल खाती है इस साधना से, हमें बड़ी प्रिय लगी, बड़ी कल्याणकारी लगी, हम तो वही सिखाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो तरीका है वो खराब है, वो तरीका भी जैसे कहा अनेक लोगों को सूट करता है, उनके लिए वो मुबारक हो, परस्पर एक दूसरे के प्रति विरोध का भाव बिल्कुल ना हो। हाउ इज द डे ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ? वेल आई विल टेल यू आफ्टर आई डाई। यू सी एवरी मोमेंट यू आर डाइंग, एवरी मोमेंट वन टेक्स बर्थ एंड डाइज, टेक्स बर्थ एंड डाइज, वन कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ दिस लाइफ, इट विल बिकम सो क्लियर। स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द डेथ ऑफ दिस मोमेंट। मन क्या है और कहाँ है ये हमारे कहने से नहीं विपश्यना करने से जानोगे। पूर्व जन्म और अगले जन्म के बारे में आपके विचार। विपश्यना के लिए आने वाला व्यक्ति पहले इस बात को मान ले कि पूर्व जन्म भी होता है पश्चात जन्म भी होता है तो ही विपश्यना सीखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इतने लोग आते हैं पश्चिम से जो इस बात को नहीं मानते कि कोई पूर्व जन्म भी होता है पश्चात जन्म भी होता है, फिर भी काम करते हैं। वर्तमान को तो मानेगा ही ना, तो वर्तमान जीवन में तो कितनी गांठें बांध रहा है, कितना व्याकुल हो रहा है, अरे उससे छुटकारा पा, उससे छुटकारा पाते 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 पूर्व जन्म अपने आप समझ में आने लगेगा, पश्चात जन्म समझ में आने लगेगा। पहले किसी पर थोपते नहीं, कोई मान्यता किसी पर विपश्यना थोपती नहीं। मुक्ति पाने के लिए विपश्यना के बिना और कोई रास्ता नहीं है क्या, बताइए? मुक्ति विकारों की है, अगर और कोई भी तरीके से विकार निकलता हो, और केवल ऊपरी ऊपरी मन का नहीं अंतर मन की गहराइयों का विकार निकलता हो तो उसे चाहे विपश्यना नाम दो चाहे कुछ और नाम दो, हमें उसकी कोई फर्क नहीं मालूम होता। अंतर मन तक विकार निकला कि नहीं उसको जांचने का एक ही तरीका है कि हम अंतर मन तक गए कि नहीं। अंतर मन प्रतिक्षण हमारे शरीर की संवेदना से जुड़ा हुआ है, अगर हमने शरीर की संवेदना का अनुभव ही नहीं किया और कोई साधना ऐसी कर रहे हैं और कहते हैं हमारा अंतर्मन निर्मल हो गया, तो धोखा है ना भाई, वहां तक पहुंचे ही नहीं तुम। और शरीर की संवेदना को जानते हुए तुम मन को निर्मल कर रहे हो, सचमुच अंतर्मन तक तुम निर्मल हो रहे हो, उसको भले विपश्यना मत कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मांस अंडा खाना पाप कर्म नहीं है? यदि बौद्ध महायानी लामा लोग तो मांस अंडा खाते हैं, भाई मैं तो नहीं खाता ना, और शिविर में आते हो तो तुम्हें नहीं खिलाता ना, तुम काय दूसरे की निंदा करो, अपनी बात करो ना, आओ तुमको बिल्कुल शुद्ध सात्विक वेजिटेरियन भोजन मिलेगा। गुरुजी, मैं धर्म को धारण करने में पूर्ण विश्वास करता हूँ, लेकिन अभी कुछ देर पहले आपके प्रवचन सुनते हुए मन स्थिर नहीं रहता, क्या करूँ? इसीलिए तो विपश्यना करनी है, मन स्थिर नहीं रहता। अच्छी से अच्छी बात भी जो अच्छी लग रही है उसको भी सुनते सुनते मन भाग जाएगा कहीं, अच्छे से अच्छा दृश्य भी जो अच्छा लग रहा है मन भाग जाएगा कहीं, तो इसका मतलब मन तुम्हारा बंदर की तरह है, मरकट की तरह, इधर भागा इधर भागा, ये किया वो किया, उसे शांत करने के लिए विपश्यना में आना जरूरी है। मैंने बहुत वर्षों से विपश्यना किया है, लेकिन आपके कहे के मुताबिक लाभ अनुभव नहीं हुआ। आया एक आदमी तो ऐसा कहने वाला, तो भाई तुमने विपश्यना नहीं की। ये हो नहीं सकता कि हमारा मैला कपड़ा हो और हमें साबुन मिल गई और हम साबुन रगड़े भी और मैल नहीं उतरे, ये होने वाली बात नहीं। तो तुम्हें साबुन तो मिली पर तुम्हें उसका इस्तेमाल करना नहीं आया। अब जबकि मैं यहाँ हूँ, कोई कठिनाई हो तो हमसे मिलो और समझो कि तुम कोई गलत तरीके से तो विपश्यना नहीं कर रहे। नहीं, आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला। ये जरूर कहने वाले मिले कि हमको कम लाभ हुआ, कोई कहने वाला मिला ज़्यादा लाभ हुआ, कम या ज़्यादा उसके अपनी मेहनत के अनुसार होगा, लेकिन बिल्कुल लाभ नहीं हुआ ऐसा कोई नहीं होता। अगर नहीं काम करे तो कितने भी शिविर लेते जाए, कर्मकांड बना ले उसको कि वहाँ गया और ये काम पूरा कर लिया, वो पूरा कर लिया, बात समझी नहीं, तो उसका परिणाम कैसे आएगा? तो मुझसे एक बार आके मिल ले। व्हाट इज़ गॉड एंड वेयर इज़ ही? ट्रुथ इज़ गॉड एंड इट इज़ विद इन यू। लर्न हाउ टू विटनेस दिस गॉड एंड यू विल बी आउट ऑफ ऑल द मिजरीज। मे ऑल ऑफ यू बी आउट ऑफ मिजरीज। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।